ओम शांति। त्रिलोकीनाथ बाबा के मास्टर त्रिलोकीनाथ बच्चे और गीता के भगवान की सच्ची गीता जिन्होंने अपने जीवन में उतारी है, ऐसे गीता दीदी जी हम सबके बीच में हैं। आप कहेंगे कि मास्टर त्रिलोकीनाथ, ये तो बाबा ने हम सभी को टाइटल दिया है, वो तीन लोग हम जानते हैं, लेकिन जिन आत्माओं में ज्ञान योग धारणा और सेवा की लगन है, एक बाबा दूजा न कोई, ऐसी धारणा में सदैव अपने आप को लगातार उसी पुरुषार्थ से तपस्वी मूर्त बने। और आज सुबह देखो तो दीदी ज्ञान सरोवर में, अभी 10 बजे देखो तो पांडव भवन में, और फिर देखेंगे आप दोपहर को तो दीदी कहाँ मिलेंगे। तो बाबा सूक्ष्म में तो चक्कर लगवाते ही है, लेकिन स्थूल रूप में भी महारथी आत्माओं की ये मास्टर त्रिलोकीनाथ की स्थिति हम देखते हैं। अथकता का वरदान भी बाबा से इन्हें प्राप्त है, इसीलिए कल भी मैंने कहा था, अभी वर्ष गिनने की और कहने की बात नहीं रही, जिनके जीवन के द्वारा ही बाबा की साक्षात वरदानों की अनुभूति हम सभी को होती है, ऐसे अनुभवी मूर्त गीता दीदी जी हम सभी के बीच में है। दीदी जी हम सभी का क्लास कराएंगे तपस्या का फाउंडेशन, आत्म अभिमानी स्थिति। हम ब्राह्मणपुर से आए हैं बाबा के घर में, पर ब्राह्मणपुर से आकर के दीदी हम ब्रह्मांड निवासी बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं, इसीलिए 3 दिन मौन भट्टी में संकल्प किया है, थोड़ा सा लूज नजर आया तो उसको अभी दीदी टाइट भी कराएंगे। तो हम सब एक हाथ की ताली से दीदी जी का स्वागत करते हैं, स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। आदरणीय गीता दीदी जी।
ओम शांति। सभी तपस्वियों का भी हार्दिक स्वागत है। भक्ति में भी तपस्या का कितना महत्व है, बल रोज पूजा पाठ धूप दीप भजन कीर्तन करते हैं तो भी वर्ष में चातुर्मास श्रावण मास तपस्या का मास आता है। हमारी ही यादगार है, हर धर्म वाले भी देखो, जैनों का भी पर्युषण मास चल रहा है, तपस्या का मास चलता है। मुस्लिम भाई बहने भी रमजान मास मनाते हैं, रोजा रखते हैं, उपवास रखते हैं। क्रिश्चियनों में भी हमने पढ़ा, जिसकी संस्कृति भोगवादी संस्कृति कही जाती है, लेकिन वे भी ईस्टर के दिनों में है, उनके भी वो 10-15 दिन आते हैं जब वो भी तपस्या करते हैं। तो भक्ति में भी वही तपस्या के दिन चल रहे हैं और बाबा के बेहद घर तपोभूमि में भी तपस्या चल रही है। और मधुबन से तपस्या के वाइब्रेशन चारों ओर पहुंचते हैं, तो आप खुद तपस्या कर रहे हैं पर फायदा हम सब भी ले रहे हैं। आपके वाइब्रेशंस हमें भी कहते हैं कि तपस्या कर रही है। भक्ति में भी क्योंकि उनको सही ज्ञान नहीं है और हर आत्मा चाहती तो है कि हम शुद्ध बने, विषय वासनाओं से मुक्त हों। ईश्वर को तो कहते ही रहते हैं आरती में, भजन में, प्रार्थना में, हमें विषय विकारों से छुड़ाओ। खुद भी पुरुषार्थ करते रहते हैं। वो देह दमन की तपस्या करते हैं, एक एक इंद्रिय को शुद्ध बनाना है तो वे भी उपवास करते हैं, व्रत रखते हैं, यात्रा करते हैं, दान पुण्य करते हैं। धर्म का लक्ष्य ही है आत्म शुद्धि और परमात्मा प्राप्ति। इस दो लक्ष्य से ही तो धर्म को जीवन में स्थान देते हैं। तो शुद्धि के लिए इंद्रियों का दमन करते हैं। बाबा ने हमें सही तपस्या सिखाई है। हम सबका भी लक्ष्य है कि हम भी संपूर्ण निर्विकारी बने, है ना लक्ष्य? हम भी चाहते हैं कि जब स्वयं भगवान पावन बनाने आए हैं तो हम भी इतना पावन बने, विकार का कोई अंश न रहे। वरना बाबा के बनते ही ब्रह्मचर्य तो धारण हो ही गया, व्यक्षण फैशन पिक्चर होटल तो छूट गए, माने वो सारी अपवित्रता तो ज्ञान में आते ही चली गई। पर हम तो ये जीवन जी रहे हैं तपस्या का, क्योंकि हम चाहते हैं बाबा जैसे बने। आज भी बाबा ने कहा बाप समान संपन्न बनना है, याद कराए ना बाबा ने आज की मुरली में। इसलिए जीवन भर हम भी ये पुरुषार्थ करते हैं और बाबा तो हमें मिल चुके हैं। वो तो इतनी भक्ति तपस्या हठ दमन इसलिए करते हैं कि ईश्वर की प्राप्ति हो। हमें तो ईश्वर मिल चुका है, कितनी बड़ी बात है। ये सत्य है, ये वास्तविकता है कि हमें तो भगवान मिल चुके हैं। हम उससे पाने के लिए तपस्या नहीं कर रहे, हम तो उनके जैसे बनने के लिए तपस्या कर रहे हैं। वो जो वर्षा दे रहे हैं संपूर्ण सत्य ज्ञान का, सर्व गुणों का, सर्व शक्तियों का जो वर्षा दे रहे हैं, वो अपने में समाने के लिए हम तपस्या कर रहे हैं। भक्ति में तो बहुत हल्का लक्ष्य रखते थे तुम्हारे चरण की धूल बना दो, तुम्हारे गोवर्धन का पत्थर बना दो, तुम्हारे ब्रज की गाय बना दो, है ना। बहुत छोटे लक्ष्य रखते थे, अब तो बाबा ने इतना ऊंचा लक्ष्य दे दिया कि तुम तो मेरे जैसे बन सकते। हर आत्मा को अधिकार है, कोई अंतर बाबा ने नहीं रखा। भाई बन सकते, बहने नहीं बन सकती, कोई अंतर नहीं रखा। बड़े बन सकते, छोटे नहीं बन सकते। यहाँ तो बाल बच्चे, युवा बूढ़े सब पढ़ रहे हैं। समर्पित बन सकते हैं, ट्रस्टी नहीं बन सकते, ऐसा भी नहीं। घर में रहे, कहीं भी रहे, हर आत्मा का अधिकार है संपूर्ण बनने का। कितनी बड़ी चीज है। जब बने थे आज से 50 वर्ष पूर्व, तब तो हमें कुछ पता नहीं था, पर आज देख रहे हैं कि दुनिया में कितने भेदभाव हैं। बीच में महिलाएं युद्ध कर रही थी कि हर मंदिर में प्रवेश मिले। हमें तो कोई युद्ध नहीं करना। सोचा नहीं था भगवान इतना अच्छा होगा। कितना प्यार करता है, कितनी ऊंची नजर से देखता है, हमें बनाने के लिए कितनी मेहनत करता है। तो हम सबका भी दिल करता है कि बाबा की मेहनत व्यर्थ न जाए, हम भी रिजल्ट दें, हम भी रिजल्ट दें, हम उसके प्रमाण बन जाएं कि हाँ भगवान ने उनके जैसा बनाने की मेहनत की है, हम साक्षी हैं, हम बने हैं, एग्जाम्पल बन जाएं। तो रोज भल हम बाबा के बच्चे रोज ज्ञान योग करते हैं, लेकिन फिर भी विशेष रूप से समय निकाल करके तपस्या के लिए बैठना वो भी जरूरी है। जब तक कि हम नेचुरल योगी बन जाएं, हम नेचुरल योगी बन जाएं, निरंतर योगी बन जाएं, हम नेचुरल प्योर बन जाएं, निर्दोष बन जाएं, कोई दोष न रहे, उसके लिए नित्य पुरुषार्थ करना और विशेष पुरुषार्थ करना दोनों जरूरी है। और ये सौभाग्य है आप सबका, ये लास्ट ग्रुप है भट्टी का, इसके बाद तो फिर मेडिकल विंग वालों ने लिया है, और फिर बॉम्बे का एक ग्रुप है, पर उसमें तो नॉन बीके भी आते हैं। तो ये तपस्वियों का तो लास्ट ग्रुप है, आप सब फाइनल स्टैंप लगाने आए हैं। और पांडव भवन तो नेचुरल योगी बनने की भूमि है, इस भूमि पर हमारे आदि पिता ने, मम्मा ने, दादियों ने तपस्या की है। तो यहाँ के वातावरण में तो बाबा बाबा ही है। हमारी तपस्या की शुरुआत आत्मभिमानी स्थिति से होती है। भोगी और योगी में अंतर क्या है? बेसिक अंतर तो यही है ना कि जो खुद को देह समझते हैं और देहभान में रहते हैं, इंद्रिय रसों में लिप्त होते हैं, वे भोगी हैं। और जो देहभान से पर आत्मस्मृति में रहते हैं, आत्म गुणों को धारण करते हैं और एक बाबा की याद में रहते हैं, वे योगी हैं। तो हमारे तपस्या की शुरुआत प्रथम लेसन से ही है, देहभान से न्यारा होना। और आप सब यथार्थ योगी हैं, इसलिए देखो आज की मुरली भी इसी विषय पर है ना? कि सदा एक रस चमकता चैतन्य सितारा पर। तो बाबा बिल्कुल आपके साथ है आज से, है? वरदान में भी न्यारेपन की बात है और शरीरी बनने की बात है। आज सारा दिन वही अभ्यास करना है। हमें स्पष्ट हो जाए कि देहभान विकारों में ले जाता है और देहभान से न्यारी आत्मभिमानी स्थिति हमें बाबा से जोड़ती है। भक्ति में भी तपस्या करते हैं, उनको सही ज्ञान नहीं है तो वो दुनिया से दूर जाते हैं, गुफाओं में बैठते हैं और इंद्रिय जीत बनने के लिए देह दमन की तपस्या करते हैं। एक योगी तपस्वी का चित्र बनाते हैं तो कैसा बनाते हैं? बच्चों के कार्यक्रम में एक बार बच्चों को कहा, योगी का चित्र बनाओ। तो बच्चों ने ऐसा ही बनाया, पहाड़ बताए, जंगल बताए, पेड़ के नीचे गुफा में आंख बंद करके बैठा हुआ तपस्वी बताए। भारत के हर नागरिक में तपस्या का ज्ञान है। बाबा ने हमें सही तरीका बताया। हमें दुनिया या घर बार छोड़ के जाने की जरूरत नहीं है, हमें देहभान छोड़ना है। हमें देहभान छोड़ना है क्योंकि आत्मा खुद को भूल शरीर भान में आती है, तब दुनिया के विस्तार में चली जाती। आत्मा देह द्वारा दुनिया से कनेक्ट होती है। बाबा कहते ना, आप मुए मर गई दुनिया, शरीर छूटा, संसार समाप्त हुआ, नया शरीर, नया परिवार, नया संसार। तो आत्मा शरीर द्वारा दुनिया से अटैच होती है। इसलिए बाबा ने तपस्या का पहला अभ्यास हमें सिखाया कि देहभान से अलग हो जा। देह में रहते हुए कर्मेंद्रियों से कर्म करते हुए आत्मस्मृति में रहना है, मैं इससे अलग हूं। भौतिकता का पहला स्वरूप आत्मा के संपर्क में जो आता है वो क्या है? शरीर। इस दुनिया में हम आते हैं तो प्रकृति का पहला स्वरूप हमारे संपर्क में कौन सा आता है? शरीर। इसलिए बाबा ने हमें सिखाया आप उससे अलग है, आप इस शरीर से अलग है। और उसकी सिंपल विधि, कोई मुश्किल तपस्या नहीं, कि देहभान मिटाना है तो आत्मस्मृति में रहना है। ना आंखें बंद करनी है, ना मौन कर लेना है, न सबसे अलग हो जाना है, न उपवास करना है। वो बैकग्राउंड तो ज्ञान में आते ही बन गए। तपस्या का आधार तो प्रथम लेसन से ही मिल गए, पवित्रता। हम बाबा के बच्चे कमल आसन पर बैठे हुए, जब भक्ति में देवताओं के चित्र देखते थे कमल आसन पर, कितना सुंदर लगता है। हम प्रैक्टिकली कमल आसन पर है। वो सिर्फ चित्र में सुंदरता दिखती है, यहाँ तो सच में जीवन सुंदर बन जाता है। पवित्रता का सबसे बड़ा व्रत हम बच्चों ने धारण किया है। किस लिए? योगी बनना है, ये हमारा लक्ष्य है। हम ग्रस्ती नहीं त्रस्ती हैं, हम भोगी नहीं योगी हैं, हम संसारी नहीं हम आध्यात्मिक हैं, रूहानी हैं। तपस्या का बैकग्राउंड बाबा के बनते ही बन गए। अब सबसे बुद्धि योग हटाकर दुख तो पाते ही थे देह संबंधों में, दुनिया में दुखों का अनुभव तो किया ही है, पर वहां से बुद्धि योग हटाकर क्यों हटाना है? योगी बनना है। इसलिए बाबा कहते हैं तुम्हारा ये अंतिम जन्म योग के लिए बेहद वैराग्य के लिए है। तुम राज ऋषि हो, हमारी तपस्या शुरू होती है पवित्र ज्ञानी बनने के बाद तुरंत। वो तो जो भी हठ दमन तप व्रत करते हैं पवित्र बनने के लिए, पवित्र तो हम बाबा के सत्य ज्ञान की शक्ति से ही बन गए। हमारा जीवन शुरू ही ब्रह्मचर्य से, पर सबसे बुद्धि हटाकर पवित्र बनकर अब मुझे क्या करना है, अब मुझे क्या करना है, बस उस एक की याद में रहना है, जीना है, चलना है। बर हर क्षण शरीर द्वारा कर्म करते हैं, क्योंकि आत्मा शरीर धारण करने के बाद एक क्षण भी कर्म किए बिगर रह नहीं सकते। हम चैतन्य है ना, पर हर क्षण शरीर द्वारा कर्म करते हुए, कर्मेंद्रिय से कर्म करते हुए मुझे कर्मेंद्रिय से, कर्मेंद्रिय इंद्रिय के रस से न्यारा रहे। इसलिए हम पहली तपस्या आत्मभिमानी बनने की करते, वृत्ति बदली, हमारी वृत्ति आत्मिक हुई, हम हरेक को रूहानी नजर से देखते हैं। लौकिक अलौकिक छोटे बड़े हर किसी को हम रूहानी नजर से देखते हैं, भाई बहनों को देखते हैं, बहने भाइयों को देखते हैं, बहने बहनों को देखते हैं, भाई भाई को देखते हैं, तो भी आत्मभिमानी नजर। बहन बहन को भी आत्मदृष्टि से, भाई भाई को भी आत्मदृष्टि से। तो लौकिक भाव आएगा नहीं। इस अलौकिक नए जन्म में बाबा ने किसी को भी ग्रस्ती नहीं बनाया है, अगर कुमार अगर कुमारी नहीं बनाया है। इस अलौकिक नए जन्म में हम सब ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी हैं। तो हम सबको रूहानी नजर से देखते हैं, देह संबंध के अधिकार से नहीं देखते। समझे ना बात को, कि देह संबंध के अधिकार से नहीं देखते हैं कि ये पत्नी है ये पति है, रूहानी नजर से देख रहे हैं, बल रोल प्ले कर रहे हैं, पर हम रिस्पेक्ट करते हैं रूहानी नजर से। ये डिटैचमेंट, न्यारापन ही फाउंडेशन है योग का। ये न्यारापन चाहिए। बाबा कहते हैं ना, न्यारा और प्यारा, माना न्यारा ही प्यारा है, और न्यारा देहभान से न्यारा, जिम्मेवारियों से नहीं। जिम्मेवारी तो डबल कर दी बाबा ने, एक परिवार संभालते थे, इससे बड़ा बेहद का परिवार दे दिया, तो जिम्मेवारी तो बाबा बढ़ाते, संबंध बढ़ाते हैं। पहले तो लौकिक परिवार को देखते थे, अब अलौकिक परिवार में भी हम हैं। तो लोगों से न्यारा नहीं, जिम्मेवारियों से अलग नहीं, प्रवृत्ति से दूर नहीं, ये तो नई ही चीज बाबा ने सिखाई कि देहभान से न्यारा रहे। कोई मिलने आते हैं, हम भागते नहीं हैं, हम एक आश्रम में गए थे, वहां मौन रूम थे, वो स्वामी ने वहां लिखा था कि आप आए हैं तो आपका स्वागत है, आप नहीं आए तो हजार बार स्वागत है, आप आए ही नहीं तो पद्मा पद्म बार स्वागत, ऐसे लिखा था। क्योंकि वो तो समझते हैं ना कि तपस्या माना किसी से नहीं मिलना, अलग हो जाता। ये तो बाबा ने नई चीज सिखाई, परिवार बढ़ा, संबंध बढ़े, जिम्मेवारियां बढ़ी, सेवा प्रवृत्ति बढ़ी, पर हम फिर भी कहीं भी लिप्त नहीं, क्योंकि हम तो अंदर से अलग है। कोई हमें मिलने आते हैं, हम अंदर से अलग हो जाते हैं। ये देहभान से डिटैचमेंट, वो प्रैक्टिस करनी है। क्यों लंबा समय बाबा ने हमें दिया? ताकि ऐसी दुनिया स्थापन करने निमित्त बनना है, और जाना है हमें यहां डिटैच होना सहज है, क्योंकि दुनिया में कुछ अब है ही नहीं, कोई रस कस है नहीं, कोई दम है नहीं, है क्या, खाली खोखा बन गया है ना, ना आत्माओं में कोई जान है, ना प्रकृति में कोई सत्व है। हम दुखी तो हो ही रहे थे, पर दुख से तो कोई त्यागी नहीं बन सकता है, समझ से बन सकता है, वो समझ बाबा ने दी। ज्ञान से वैराग्य आ सकता है, दुख से नहीं आता है। हम दुखी होते रहते थे फिर भी उसी में पड़े रहते थे कि नहीं, लड़ते भी रहते थे, दुखी भी होते रहते थे, पर उसी में फंसते भी रहते थे। एक सत्य ज्ञान की चिंगारी ने हमें डिटैच कर दिया। पहले पाठ ने ही न्यारा कर दिया। और ये स्मृति इतना बाबा कहते हैं करो कि भल देखने में शरीर आता है, पर स्मृति इतनी आत्म स्वरूप की हो कि ज्योति बिंदु चमकता सितारा ही दिखाई दे। कैसे है ना वो दीवे तले अंधेरा, क्यों ऐसा कहते हैं? अर्थ कोई भी वो लेते हैं, पर मैं तो ये अर्थ लेती हूँ कि जब मैं चमक जाती हूँ तो ये तो अंधकार में छिप जाता है, है ना, बॉडी गायब हो जाती है और जहां से रोशनी आती है वही दिखाई देता है ना। हम स्मृति इतनी करें कि यही दिखाई दे। देखो चेहरा तो वही है पर अंदर की स्थिति अनुसार दिखाई देता है। मन में फिकर चिंता है तो लोग चेहरे से परख जाते हैं ना कि भाई क्यों, क्या बात है, बड़े उदास लग रहे हो, चेहरा तो वही है। क्यों भाई क्या बात है, बहुत खुश नजर आ रहे हैं, चेहरा तो वही है। स्थिति मनोस्मृति, चेहरा तो वही साधारण है अंतिम जन्म का, पर स्मृति अगर चमकते सितारे की है तो जो रोशनी दिखती है तो बाकी सब अंधेरे में छिप जाता है। जो प्रत्यक्ष है वो छिप जाए, जो गुप्त है वो प्रत्यक्ष हो जाए। क्योंकि मैं तो आत्मा हूं ना भाई, मैं आपसे मिल रही हूं, माना क्या दिखना चाहिए, मैं दिखनी चाहिए ना, माना मैं बिंदु दिखना चाहिए। तो वो स्वरूप की स्मृति इतनी कंटिन्यूअस हो कि कांस्टेंट वही लाइफ, वही लाइट दिखाई दे। अंधेरे में दूर से मोटर कार आती है तो क्या दिखाई देता है, लाइट ही दिखाई देती, दो फोकस ही दिखाई देते, मोटर गायब है, दिखाई नहीं देती। हमारे जैसे नए तो कहेंगे दो स्कूटर वाले आ रहे हैं, जो अभ्यासी है उनको पता है कि वो समझते, मोटर छिप जाती है क्योंकि फोकसिंग इतना पावरफुल है कि मोटर छिप जाती है। ये फोकसिंग इतना पावरफुल हो कि ये मोटर छिप जाए, नजर ही ना। इतनी स्मृति हमें रहे, बस वही तपस्या। और फिर हम अपना बुद्धि योग, क्योंकि संपूर्ण आत्माभिमानी बनना है तो निराकार की याद के बिगर नहीं बन सकते, इसलिए मैं निराकार आत्मा निराकार बाप को याद कर, भक्ति में भी कहते हैं, वो लोग भी कहते हैं, पर ज्ञान भूल जाता है और क्रियाएं रह जाती हैं। बाकी भक्ति में भी कहते हैं कि स्थूल से सूक्ष्म में और सूक्ष्म से मूल में जाना है, ये कृष्ण की मूर्ति लेकर भक्ति करते हैं तो वो स्थूल है, पर मन में ही कृष्ण का रूप लाकर याद करते हैं वो सूक्ष्म है, पर बिंदु को याद करते हैं तो वो मूल है। हम वही अभ्यास कर रहे हैं, है ना? स्थूल साकार जीवन ब्राह्मण जीवन बना, पवित्र जीवन बना, ये साकार जीवन सफल हुआ तो सूक्ष्म में प्रवेश किया, लाइट स्वरूप बने, डिटैच होता है तो अपने आप लाइट हो जाते, बोझ अटैचमेंट का है, आप डिटैच हो जाओ तो हल्के हो जाते, हम इससे डिटैच हुए कि मैं अलग हूं, मैं ये तत्व नहीं हूं, मैं शक्ति हूं, ज्योति हूं, अलग हुए ना, लाइट हो गए, और बाबा ने उससे आगे बना, वो फरिश्ता जीवन बना, और उससे आगे कि आपको अपने असली घर में असली स्वरूप में वापस जाना है, फिर अपने ओरिजिनल शक्ति रूप में स्थापित होना, तो हम रोज इस दुनिया से ऊपर उठते हैं, परम धाम में जाते हैं और अपने असली घर में असली स्वरूप में असली पिता को याद करते हैं। तो ये जो रोज अभ्यास करते हैं, जैसे आत्मभिमानी स्थिति का अभ्यास करते हैं, हम देह से न्यारे डिटैच होते हैं तो हम सभी बातों से साक्षी बन जाते हैं। तो हम साक्षी बनते हैं। और जब व्यक्ति साक्षी बनता है तो सही परखता है और निर्णय कर सकता है। जब तक आप किसी में इन्वॉल्व हैं आप सही परख नहीं सके। जब सब तरफ से साक्षी है तो रियलिटी क्या है वो परख में आती है। तो सिर्फ एक ही अभ्यास, मैं देह से अलग हूं, इस डिटैचमेंट के अभ्यास ने साक्षी बनाए। तो अब हमें सही समझ में आ रहा है हम कौन हैं, दूसरे कौन हैं, ड्रामा क्या है, परिस्थितियां क्या है। आप साक्षी होकर ऑब्जर्व करेंगे तो सही बात समझ में आएंगे, नहीं तो विवेक काम नहीं करता। सॉल्यूशन सामने पड़ा है पर दिखाई नहीं देगा क्योंकि बुद्धि अंधी है, कहीं फंसी है। डिटैच, साक्षी, तो बीज कारण समझ में आता है कि ये जो परिस्थिति मेरे सामने आई है वो क्या है और क्यों है। जो मेरी वास्तविकता है, मेरी रियलिटी क्या है, मैं आत्मा हूं, ये सत्यता है ना। जब मैं अपनी रियलिटी में स्थित होती हूं तो मैं वर्तमान पर फोकस होती हूं, तो मेरी बुद्धि प्रेजेंट में रहे। और तब मुझे समझ में आता है कि जो हुआ वो क्या है और जो भविष्य है वो कैसे श्रेष्ठ बनना है वो समझ में आ जाता है। क्योंकि जब हम अपनी सत्यता में स्थित है, अपने वास्तव तविक शुद्ध सत्य स्वरूप में स्थित है, तो जो बीता वो भी समझ में आता है। इस जन्म का जितना भी ज्ञान से पहले के साल रहे वो क्या रहे वो समझ में आता है कि उसमें मैंने राइट रॉन्ग क्या किया, समझ में आता है। और वर्तमान मेरा सही हो रहा है तो भविष्य की कोई चिंता नहीं है, गारंटेड है ना। कई कहते हैं ना कि किसने देखा सतयुग में जाएंगे? मैंने देखा अपने कर्म से, हम कह सकते हैं। वर्तमान यथार्थ है, बीते कर्मों के हिसाब चुकाने में भी मदद मिलती है। चुकाएंगे तो जरूर, बनाए हैं तो चुकाने भी होंगे, पर मुझे सहज लगेगा क्योंकि वर्तमान सही स्थिति की शक्ति किए हिसाब को चुकाने में मदद करती। हम भारी नहीं होंगे, हम सह सकेंगे, स्थिर बैलेंस्ड रह सकेंगे। और भविष्य तो अंडरस्टूड है कि श्रेष्ठ होना ही है। एक ही आत्मभिमानी स्थिति का इतना प्रभाव है। ये सामान्य लेसन नहीं है। क्यों बाबा 50 बार रिपीट करता है? अब समझ में आता है, अवस्था बनती है तो समझ में आता है। और हम अपने स्व में हिले नहीं, डगमग ना हो, हर परिस्थिति में भी अचल बने रहें, इसलिए बाबा को साथी बनाते, उनसे जुड़ते हैं। बाकी तो सब परिवर्तनशील है। हर आत्मा ऊपर नीचे होती है, अवस्था में, कर्म में, गुणों में, परिस्थितियां भी परिवर्तनशील हैं। बाकी सब कुछ हलचल है, अचल कौन है? मैं हूं और बाबा। इसलिए बाबा से बुद्धि योग लगाते, बाबा की याद, बाबा का प्यार, वो शक्ति देता है स्व में स्थित रहने। बाबा को हमसे कराना है ना, हमसे दुनिया बदलनी है, हमसे नई दुनिया बसानी है, हमें उस नई दुनिया का मालिक बनाना है, तो बाबा हम बच्चों से कराते हैं। कई सोचते हैं कि बाबा तो सिर्फ ज्ञान ही देते रहते, थोड़ा और भी कुछ दे दे, धन भी दे दें, कुछ धंधा भी अच्छा कर दें, बीमारी भी दूर कर दें। हम तो बच्चे हैं ना उनके। पर वास्तव में जो दे रहा है वो ही सबसे उत्तम दे रहा है, वो और कोई नहीं दे सकता है। और अल्टीमेट तो वही स्थाई रहता है। जो आत्मा की स्थिति बनाता है और शक्ति बाबा भरते हैं, वही तो स्थाई चीज है। बाकी तो है नहीं भी रहेगा, नहीं है वो आ भी जाएगा। अचल तो मुझे बनना है ना, तभी हम भाग्यशाली हैं और हम परख सके हैं, बाबा को पहचान सके हैं। ये हम आत्माओं की विशेषता है और हम उस पुरुषार्थ में लगे हैं और हम सबका निर्णय है कि हम अंत तक ये पुरुषार्थ करते रहेंगे और जो बाबा चाहते हैं वो हम जरूर बन के दिखाएंगे। डिटैच है तो आप देखो प्रभाव भी बातों का पड़ता नहीं। बाबा कहते हैं ना, आत्मा निर्लेप नहीं है, आत्मभिमानी स्थिति निर्लेप है। आत्मा निर्लेप नहीं है, कर्म का प्रभाव तो पड़ना है ना आत्मा पर आत्मभिमानी स्थिति निर्लेप है। कोई बुरा कर रहा है या सामने आ रहा है तो भी प्रभाव नहीं पड़ता। है ना, बाबा के बच्चे आप देखिए इतने शक्तिशाली हैं। मान लो एक घड़ी मैं भूल करूंगी तो भी आप नहीं करेंगे, क्योंकि आप भी ज्ञानी स्वास्थ्य। गलत का प्रभाव नहीं पड़ता है। आज देख रहे हो ना दुनिया में, खुद सत्य का स्वीकार नहीं कर सकते हैं तो उनके शिष्य भी क्या कर रहे हैं? और यहाँ एक एक बाबा के बच्चे इतने शक्तिशाली हैं, जागृत हैं कि एक घड़ी कोई गलत करेगा तो भी हम नहीं करेंगे। बाबा के ज्ञान से इतनी लाइट और माइट, समझ, लाइट माना समझ और शक्ति हमें मिलती है कि हम गलत से भी प्रभावित नहीं होते। और जो राइट कर्म हम करते हैं, श्रीमत पर चलते हैं, सेवाधारी बनते हैं, सहयोगी बनते हैं, हम बाबा के लिए सब कुछ समर्पण है, पर उसका भी अभिमान नहीं है, उसका भी अभिमान नहीं, क्योंकि पता है सिखाया समझाया बनाया बाबा ने है, तो उसका भी अभिमान नहीं आता। ये निर्लेप स्टेज है। कोई कैसे भी वाइब्रेशन से आते हैं, हमें मिलते हैं, पर हम आत्मभिमानी हैं, बाबा की याद में हैं, तो वो वाइब्रेशंस हमें प्रभावित नहीं करते। बल्कि हम उनको बाबा की याद दिला सकते हैं, सही समझा सकते हैं, हमें देखकर उनको सही बोध आ सकता है। इसलिए जीवन शुरू भी आत्मभिमानी स्थिति से है और संपूर्ण भी होना है आत्माभिमानी स्थिति से, बिंदु बन लास्ट में। बस अभ्यास, लगन वही बना के रखना है। बाकी एक बाप दूसरा न कोई, ये एक और तपस्या है। यहाँ रहते सदा ऊपर रहना, इन आंखों से इस दुनिया को देखना और मन की आंख से घर को देखना, ये एक और तपस्या है। कर्मेंद्रियों से कोई पाप न करना, इतना संयम और सेल्फ कंट्रोल रखना, ये जीवन भर की तपस्या है। और सदा यज्ञ के विधि विधान अनुसार चलना, और कोई मनमत परमत में फंसना नहीं, ये एक प्रैक्टिकल तपस्या है। तो साइलेंस में बैठकर देखना अपने आप को, ये सारी तपस्या कैसी चल रही है। ओम शांति।
धन्यवाद दीदी जी। भिन्न भिन्न प्रकार के पहलू तपस्या के हम सभी को समझाए और गहराई में लेकर के गए, है ना। तो इसीलिए तपस्या के लिए और भी हमको एक नया दृष्टिकोण प्राप्त हुआ, जिसका हम सब अनुभव करेंगे।